नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और दीर्घकालिक विकास यात्रा का महत्वपूर्ण स्तंभ है। कृषि और ग्रामीण परिवर्तन विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से कई कदम उठाए हैं।
कृषि, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का स्ट्रेटेजिक पिलर भी है और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है।
श्री मोदी ने कहा कि इस साल का बजट अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है।
दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है, हमारे पास डाइवर्स क्लाइमेट है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध है। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है और एक्सपोर्ट ट्रेंड को बढ़ावा देता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कृषि में प्रौद्योगिकी लाने पर विशेष जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना और स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता जैसे प्रयासों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत की ईंधन आयात पर निर्भरता कम करने और देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बायोगैस सबसे अच्छा विकल्प है। उन्होंने बात पुणे की यशवंतराव चौहान विकास प्रशासन अकादमी में आयोजित कंप्रेस्ड बायोगैस सम्मेलन 2026 के उद्घाटन के अवसर पर कही। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के बिना भारत का औद्योगिक विकास असंभव है। ओडिशा में कटक के मुंडली में सीआईएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह बल देश भर में प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अनिश्चितता के इस युग में प्रासंगिक रहने का एकमात्र रास्ता आत्मनिर्भरता ही है। श्री सिंह ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित रक्षा और समुद्री संवाद सागर संकल्प भारत की समुद्री शान की वापसी का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस पावर से जुड़ी कंपनियों में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में आज मुंबई और हैदराबाद में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। अधिकारियों के अनुसार ईडी की लगभग 15 टीमों ने आज तड़के मुंबई में मुख्य रूप से 10 से 12 स्थानों पर छापेमारी की। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए समुद्र विकास में स्थिरता आवश्यक है। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत के निर्णय राष्ट्रहितों के अनुरूप होते हैं और किसी एक गुट के साथ जुड़े नहीं हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर इंडिगो एयरलाइन ने पश्चिम एशिया और इस्तांबुल से आने जाने वाली उड़ानों के टिकट रद्द कराने पर मिलने वाली पूरी छूट 31 मार्च तक बढ़ाने की घोषणा की है। इंडिगो ने बताया कि एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी है कि यदि उनकी यात्रा निर्धारित है तो वे उड़ान की स्थिति के बारे में अपडेट रहें। नेपाल में नई संसद के चुनाव के लिए मतगणना जारी है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी 60 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है। एक रिपोर्ट।
नेपाल के हर निर्वाचन क्षेत्र में मतपत्रों की गिनती जारी है। दोपहर तक रवि लामिछाने की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को 60 निर्वाचन क्षेत्रों में बढ़त मिली है। गगन थापा की नेपाली कांग्रेस 9 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है। ओली की यूएमएल पार्टी 4 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है। फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के तहत नेपाल में 165 सीटों के लिए आज शाम तक अंतिम नतीजे सार्वजनिक होने की उम्मीद है। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू।
ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज अंतिम 8 के मुकाबले में लक्ष्य सेन का मुकाबला चीन के ली शी फेंग से होगा। लक्ष्य सेन ने कल बर्मिंघम में पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। लक्ष्य सेन ने प्री क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के एनजी एंगस को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।